اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا علی مدد. اعزائے گرامی، پروگرام ہے میرے اپنوں کے ساتھ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ شجاع رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا نیٹورک پی سی این. کاربن مینجمنٹ کے سلسلے میں یہ پروگرام ہے. جو پہلے بھی ہم کاربن مینجمنٹ کے سلسلے میں پروگرام کر چکے ہیں، آپ انشاءاللہ پہلے بھی دیکھ چکے ہوں گے یقینا. یہ ایک بار پھر ہمیں کاربن مینجمنٹ کے سلسلے میں پروگرام کرنا پڑ گیا. سلسلہ کچھ یوں ہے عزیزان گرامی، جب بھی کوئی مخصوصی آتی ہے حج و زیارت کے سلسلے میں، تو مختلف قسم کے کاروان، مختلف قسم کے ریٹس فلوٹ کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے $700، $800، $900، عام دنوں میں $1000، $1200 تک. اور جب کوئی مخصوصی ہوتی ہے، خصوصیت کے ساتھ چہلم، تو ریٹ بہت زیادہ بڑے ہوئے ہوتے ہیں. چہلم کے اوپر یقیناً لوگ $1600، $1800، $2000 اور $2600 تک کے ریٹس سامنے آتے ہیں. لیکن ظاہر ہے جس کو ہم نے پہلے کوشش کی تھی کہ اس کو ٹرین کریں اس معاملے کے اوپر، کہ وہ جب بھی کسی کاروان کو سلیکٹ کرے تو کچھ بیسک چیزیں اس سے سوالات کر لے، کچھ بیسک چیزیں اس سے پوچھ لے. دوبارہ ایک واقعہ ایسا ہو گیا جو یقیناً آپ سب کے سامنے موجود ہوگا، جس کی بہت زیادہ باتیں ہوئیں کاروان آف پرائڈ کے حوالے سے، جن کے لیے یہ کہا گیا کہ انہوں نے ایک بہت ہی عجیب قسم کا ریٹ، یعنی کہ بہت ہی مختصر یا بہت کم ریٹ، جو کہ $600 تھا، صرف $600، یعنی کہ 60,000 کے اندر آپ بائی ایئر ایران جائیں اور اس کے بعد عراق بائی روڈ انٹر ہو جائیں، یعنی کہ آپ کی ساری زیارتیں 60,000 کے اندر مکمل ہو رہی تھیں، جو کہ ایک بڑی عجیب سی بات تھی. بھارت زائرین حضرات نے، لوگوں نے ایسے یقیناً جنہوں نے بی سیاں بھی ڈالی تھیں، جنہوں نے اپنے زیور بھی بیچے ہوں گے، اور بیچنے کے بعد انہوں نے یقیناً اس کاروان کے ساتھ جانے کی کوشش کی. اچھا، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کاروان پہلی دفعہ جا رہا تھا، پہلے بھی یہ کاروان جا چکا تھا. تو لوگوں کا خیال تھا کہ جناب یہ یقیناً اچھی زیارتیں ہو جائیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا، اس کے برعکس ہوا. اور نہ صرف برعکس ہوا بلکہ بہت خراب ہوا. کچھ لوگ جا سکے، کچھ لوگ نہیں جا سکے. جو جا سکے وہ صرف ایران جا سکے، اور جو ایران چلے گئے وہ جو نہیں گئے ان سے زیادہ بدتر حالت میں رہے. یہ ایک عام تصویر ہے جو ایک زائر پورٹرے کر رہا ہے، جو وکٹم ہے کاروان آف پرائڈ کا. لیکن عزیزان اکرامی، صورت حال کیا ہے، صورت واقعہ ہے کیا، اور معاملات تھے کیسے، ایسا ہوا کیسے، کیا یہ بدنیت لوگ تھے، یہی کسی مس مینجمنٹ کا نتیجہ ہے، اسی سلسلے میں ہم نے بات کرنے کے لیے، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہو گئے کہ کاروان آف پرائڈ کے وہ لوگ جو اس کے ذمہ داران ہیں، آج ہم ان کو یہاں لانے میں کامیاب ہو گئے. یہ پی سی این کی ایک کوشش تھی، کاوش تھی، اور خدا کا شکر ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہوئے اور یہ لوگ یہاں پہ موجود ہیں. اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو شروع کریں اور ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اصل معاملہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، کیوں ایسا ہوا، کیا واقعتاً اس میں کوئی بدنیتی شامل ہے یا کسی مس مینجمنٹ کا نتیجہ ہے، اور اگر ایسا ہے تو اس کا حل کیا ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرمائیں اس کاروان کے روح رواں، جن کا نام آپ نے جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا پہ بھی دیکھ لیا، آن جعفری صاحب یہاں تشریف فرمائیں. میں آپ کو اس پروگرام میں آن خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری گزارش سنی، آپ یہاں تشریف لے کر آئے. اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائیں سمینہ گوھر صاحبہ. سمینہ گوھر صاحبہ یہاں پہ تشریف فرمائیں. میڈم، ہم آپ کا انتہائی ممنون و مشکور ہیں آپ کے، کہ آپ نے اپنے وقت میں سے نکال کے آپ یہاں تشریف لائیں. ساتھ ہی کاروان آف پرائڈ کے کچھ ورکرس جو اس آفس میں کام کرتے تھے، علی اصغر صاحب یہاں تشریف فرمائیں. آپ کا بہت شکر گزار ہیں علی اصغر کے آپ یہاں تشریف ہے. آپ کا نام بھی لوگوں نے بہت سے معاملات میں لیا ہے، ان کے ساتھ تشریف فرمائیں علی غزنفر صاحب. اور علی غزنفر صاحب بھی آپ کاروان آف پرائڈ کے کچھ معاملات آپ کے ہاتھ میں بھی تھے. آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب یہاں تشریف لے کر آئے. گفتگو کا آغاز کریں گے ہم اس نام سے کہ جس کی تصویریں آپ نے الیکٹرانک میڈیا پہ بھی دیکھیں اور سب جگہ جس کا نام چلتا رہا، اون جعفری یہاں تشریف فرمائیں. میں پہلا سوال اون جعفری سے کروں گا اور اس کے بعد ہم پھر آگے چلیں گے اور جو یہ سوالات کریں گے. آپ سب بھی اطمینان سے بیٹھے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کے ذہن میں سارے سوالات آ رہے ہوں وہ سارے سوالات ہم ایک ساتھ یہاں پہ کر لیں. یہ ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ پہلے معاملہ کیا تھا، پھر یقیناً جو بھی آپ کا فیڈ بیک آئے گا ہم ان سے سوال کریں گے یقیناً. تو برادر، آپ سے سوال یہ ہے میرا سب سے پہلے، کہ آپ نے اتنا لو کاسٹ قافلہ کیا سوچتے ہوئے اناؤنس کیا؟
لیکن یہ جو پیکج اناؤنس ہوا، پہلے تو میں بتاؤں کہ میں بھی वर्कर की हैसियत से उस कंपनी में काम करता था। हमारा जो बॉस था वो था अली जाफर रिजवी, जो आज नहीं है, स्क्रीन पे नहीं है। पहली रमज़ान को रात तकरीबन 2:30 बजे उनका मुझे फ़ोन आया कि उन्होंने बोला कि मैंने पैकेज अनाउंस किया है 60,000 का, और मैंने हमारे कारवान ऑफ राइड के पेज के ऊपर भी अपलोड कर दिया है। दैट वॉज शॉकिंग फॉर मी ऑल्सो कि ऐसे कैसे हो जाएगा। तो उसने कहा कि सुबह बात करते हैं। अच्छा, जब ये अनाउंस हुआ तो मैं और ये भी परेशान हो गए कि किस तरीके से ये मैनेज होगा। वेरी अर्ली मॉर्निंग बात हुई, ऑफिस गए, भाई कैसे होगा। उसने बताया कि भाई 35,000 से 40,000 रुपये का टिकट है, 6,000 रुपये का वीज़ा इराक़ का होगा, 2,800 समथिंग का वीज़ा ईरान का है डबल एंट्री, 5,000 रुपये होटल की कॉस्ट है इराक़ की, और 4,000 से 5,000 रुपये ईरान की, बाकी 3,000 से 3,500 रुपये इराक पूरी ट्रांसपोर्टेशन। ओवरऑल लो बजट था, फर्शी निज़ाम था जो अनाउंसमेंट हुई थी। रही बात न्याज नज़र की, तो लोगों ने हमसे कुछ वादे कर लिए थे कि इतना कम पैकेज है आपका तो हम आपको 3 दिन की न्याज मेरी तरफ से, 4 दिन की न्याज मेरी तरफ से, अगर ये प्रॉपरली मैनेज हो जाता काफ़िला। अच्छा, जब कैलकुलेशन सामने आई तो मैंने उसको बोला कि कैलकुलेशन तो कम से कम 70,000 से 75,000 रुपये तो कॉस्ट आ रही है। तो उसने बोला मेरे पास एक डोनर भी है।
अच्छा,
तो मैंने कहा डोनर कौन है? उसने बोला मेरा मामू है जो एलए में होता है।
ठीक।
अच्छा, हमने इतनी इतनी बूझ नहीं करी क्योंकि अय्याम फातिमिया एक ग्रुप हुआ था हमारा जिसमें 100 लोग फ्री ऑफ कॉस्ट गए थे।
अच्छा,
इसी कारवन ऑफ राइट से ईरान में 100 लोग फ्री ऑफ कॉस्ट गए थे, जो कि फंड जो है वो अली जाफर नहीं अरेंज किए थे। तो हमारे दिमाग में वो आ गया कि यार इसने वो किया था तो अब ये भी ये मैनेज कर लेगा। तो इसको लेके हम आगे चले, इस चीज़ को हम लेके आगे चलते रहे। फिर इसने मुख्तलिफ टीम के लोगों को टारगेट्स दे दिए कि भाई तुम 300 पासपोर्ट करो, तुम 200 करो, तुम 50 करो, तुम 100 करो, और सबको उसके हिसाब से कमीशन बताने लगा कि भाई मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा, मैं फलाना दूंगा।
अच्छा, 60,000 कमीशन भी मैं दूंगा, बड़ी बात।
जब 400 पासपोर्ट हो गए तो मैंने बोला यार हमारी टीम इतनी अहलियत नहीं रखती है कि हम 400 लोग भी लेके चले जाएं।
सर, जो कमीशन की बात करें तो उन्होंने बताया कमीशन कितना देंगे?
कमीशन मतलब गिफ्ट दे देंगे, मोबाइल दे देंगे।
अच्छा, मतलब ये कमीशन नहीं देंगे बेसिकली,
इन द सेंस ऑफ ये चीज दे देंगे।
ठीक, इन टर्म्स ऑफ गिफ्ट देंगे।
टर्म्स ऑफ गिफ्ट दे देंगे।
ठीक।
सब ने अपनी अपनी एफर्ट्स जी जान से मेहनत करके, सब खुलूस दिल से काम कर रहे थे। कोई टाइम देख के काम नहीं कर रहा था इसके अंदर। सुबह आने का टाइम था और कोई जाने का टाइम नहीं था।
ठीक।
जा रहे हैं कुछ 4 बजे 5 बजे सब लगे पड़े यार काम हो जाए किसी तरीके से। बहरहाल ये चीज़ें होती रही। अब 400 पासपोर्ट हो गए तो हम मैंने और इन्होंने कहा कि यार अभी बस कर दो, इतने हम नहीं संभाल सकते लोग। 175 लोग अय्याम फातिमिया में संभाले थे, वो भी बहुत मुश्किल से। तो ये तो 400 लोग हैं, वो भी आशूर, बस कर दो। सुना नहीं नहीं हो जाएगा फलाना टीम का। अच्छा, जब चीज़ें प्रॉपर होती चली गई, जैसे इराक का होटल हो गया, हमने अनाउंस किया था हम हुसैनिया देंगे लेकिन हमारी कॉस्ट के अंदर होटल भी आ गए, ईरान के अंदर भी होटल वो जो होते हैं उनके सिफारत खाने वो मैनेज हो गए,
सराय खाने
अपने हाथ से इन्होंने बुकिंग एडवांस बुकिंग के पैसे सब मैंने यहाँ से भिजवाए थे वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, वो सब चीज़ें हो गई। जब 6 सितंबर को डॉक्यूमेंटेशन जमा होना शुरू हुई ईरान कॉन्सुलेट के अंदर, इराक की अप्रूवल्स हमारे पास आ चुकी थी, ईरान में जाने से पहले अच्छी खासी अप्रूवल्स हमारे पास आ चुकी थी 700 से 800 लोगों की। जब ईरान में कॉन्सुलेट के अंदर वीजे दाखिल होना शुरू हुए,
अप्रूवल आई थी,
अप्रूवल्स आई,
वीजा नहीं,
वीजा नहीं, अप्रूवल्स आई थी,
700 तकरीबन अप्रूवल्स
आ गई थी।
ठीक है, लेकिन आपके पास तो 1200 लोग,
1200 लोग तो वो फर्दर आती रही,
आती, ठीक,
आती रही। जब ईरान कॉन्सुलेट में 6 सितंबर को वीजा जमा होना शुरू हुआ तो उन लोगों ने हमें बोला कि आपको 15 डेज में हम वीजा ग्रांट कर देंगे पासपोर्ट के ऊपर।
ठीक।
अब हमारा लड़का डेली जाता था, पासपोर्ट लेके जा रहा था, वो भी ये नहीं बता रहा कि बहुत हो गया है अब बस कर दो, वो भी लिए जा रहा, उसका भी कमीशन था, वो आउटसोर्स था, वो हमारा एम्प्लॉई नहीं था, हमने अदनान नाम का उसने हमें दिया कि किसी साहब ने कि ये तुम्हारे ईरान के वीज़े कर देगा। हमने कहा ठीक है, हमने उसके थ्रू वीज़े लगवाना शुरू कर दिए। अब जब वीज़े जमा होते 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 कुछ 23 या 24 सितंबर आ गई,
वीज़ा पहुँचा नहीं,
कोई वीज़ा नहीं लगा हमारा। अब 23-24 सितंबर आ गए, ईद की छुट्टियों से 1-2 दिन पहले, तो मैंने उसको बोला कि भाई रसीद लो, जो वाउचर होता है जब तक वाउचर नहीं लोगे तो हमें कैसे पता कि वो वीजे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए पासपोर्ट या नहीं करे, ठीक है? उसने बोला नहीं मेरी बात हो गई और ये और वो फला टीम का। वेरी नेक्स्ट डे ईद की हॉलीडेज के बाद 28 सितंबर को या 29 सितंबर को उसे दो वाउचर दिए कि भाई तुम ये जमा कराओ। उसने वो जमा करा दिए। अच्छा, वो जमा कराया जो उनका 3 बजे का टाइम होता है उसके बाद 1 अक्टूबर को दे कमिटेड कि हमें वीजा दे देंगे। जब 1 अक्टूबर आ गई, अच्छा हमारी टिकट 1100 टिकट इशूड थे, 1100 टिकट हमारे इशूड थे, इस चीज के गवाह मेरे हिसाब से तमाम लोग हैं।
ठीक है, हो सकता है।
ठीक है, तमाम लोग हैं।
टिकट जो इशू थे उसको आप किसके पास हैं टिकट?
वो हमारी ईमेल्स में भी हैं, बुखारी वाले के पास भी पड़े होंगे
ना,
ई टिकट्स, एमिरेट्स के ट्रैवल एजेंट के पास भी पड़े हुए हैं वो टिकट्स, तो हम वहां से भी ले सकते हैं अगर किसी को दिखाना होगा तो। ये हो
सर, एक सवाल ये कि अगर आपने टिकट्स ले ली, इसका इट मींस कि आपने पेमेंट कर दी होगा।
अच्छा, वो हमारी गुडविल पे काम हो रहा था, मतलब मेरी बेसिकली, क्योंकि मैं इस फील्ड के ट्रैवल एजेंसी में कुछ 10-15 साल से काम कर रहा हूँ, तो बुखारी जो हमारा ट्रैवल एजेंट था उससे मिलाने वाला भी अली जाफर को मैं ही था। जब वो हुआ, हमारी जो अगर जेन्युइनली लोग चले जाते और आ जाते तो हमारे जो टिकट्स का जो बिल था वो था 4,62,00,000 रुपये। ये मैं इसमें बाद में आता हूँ।
ठीक है,
अभी ईरान कौंसलेट हम जा रहे हैं, फिर 1 अक्टूबर आ गई, 2 आ गई, तो हमने बोला यार अब तो इनफ हो गया, अब खुद चल के बात करते हैं, देखते हैं क्या है। हमारी बदकिस्मती ये है, वो कह लें कि उस दिन जिस दिन पहुंचे उस दिन ईद-ए-गदीर थी, उस दिन कौंसलेट बंद थी, बाहर बैठे रहे पूरी शाम तक, फिर हम लोग आ गए हफ्ते को और इतवार को। फिर जो हमारी इतवार की फ़्लाइट थी वो हमारी 5 अक्टूबर की, वो हमने कैंसिल करवाई।
आपकी फ़्लाइट थी इतवार की
5 अक्टूबर, मतलब 4 की रात 5 की सुबह।
ठीक है,
4 की रात 5 की सुबह जो फ्लाइट थी 300 लोगों की, 100 लोग थे 3:30 बजे, 100 लोग थे 12:30 बजे, 100 लोग थे 2:15 बजे।
ठीक है, ये आपने सारी फ्लाइट्स कैंसिल कराई?
अब कैंसिल,
इसमें आपको कोई नुकसान तो नहीं हुआ?
कैंसिल हुआ, नो शो हुआ, फ्लाइट 2 सेक्टर खाली हो गए एयरलाइन के, कराची दुबई, दुबई तेहरान, और 300 लोग। तो एयरलाइन ने कहा कि भाई इसको हम अपने हिसाब से रिकेलकुलेट करेंगे एज अ नो शो और प्लेंटी, वो हमें चार्जेस बाद में बताए जाएंगे। हमने कहा ठीक है। इतवार को, यह बात हफ्ते को हो गई, इतवार को ईरान कौंसलेट के एक साहब जो यहीं कहीं रहते हैं उनके पास ये अली जाफर और 2 लोग और गए। उसके पास गए, उसने बोला कि भाई मेरी ये मुझे मेरी नॉलेज में नहीं था कि आपके वीज़े नहीं लग रहे हैं और मेरी ये इसकी वजह से फ़्लाइट कैंसिल हो रही है, तो आपकी जो कल रात की फ़्लाइट की टिकट्स हैं आप 9 बजे आओ मुझे काउंटर पे दो लाके, मैं आपके 300 वीज़े बिफोर डिपार्चर 7-8 आवर्स मैं आपको दे दूंगा। हमने कहा एग्रीड। 9 बजे हम पहुँचे और हमने वीज़े दे दिए, सॉरी टिकट्स उनके हाथ में दे दिए। अब वो हमें बता दें कि यार नहीं हो रहे, एक तरफ कर दे ताकि हम अपना एक नुकसान तो बचाएं टिकट्स का। 12 बजे उन्होंने मुझे कुछ 5 से 6 वाउचर्स दे दिए, जो ईरान कॉन्सुलेट के वाउचर्स मिलते हैं अभी बैंक के, वो थे कुछ 23,00,000 रुपए के। अब उसने मुझे टाइम दिया 2 घंटे में आपने पैसे जमा करा रहे, जबकि ऐसा नहीं होता ईरान कॉन्सुलेट में। एक दिन आप पासपोर्ट देते हैं, मेडिकल खुलते हैं।
देखिए, सवाल ये है कि ये तो इमरजेंसी में काम हो रहा है ना, मकसद ये वो कह रहे हैं कि आप जल्द चले, ठीक है मुझे मालूम नहीं था, अब आप लेकर आ गए हैं तो चले मैं आपको 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर करा दूँ, अब जब मेरी नॉलेज में आया तो अब तो ये काम इमरजेंसी के अंदर हो रहा है।
ठीक है,
अब ये कि आप ये 2 घंटे के अंदर 23,00,000 रुपये जमा करा दें।
अच्छा मैं बताऊँ, 350 वीज़े के पेमेंट ऑलरेडी जमा हो हुई भी थी।
ठीक,
हमें तो 300 चाहिए थे।
ठीक, 350 की जमा हुई,
ऑलरेडी जमा थी, 1 अक्टूबर को ही जमा हो जाती हो गई, उसकी पूरी एविडेंस चीज़ है इधर मेरे पास। अब जब 12 बजे से मुझे रसीदें दी, रसीद लेके जब मैं बैंक गया हूँ तो तकरीबन 2:30-3 बजे मैं सारे पैसे जमा करा के जब मैं ईरान कौंसलेट आया हूँ तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो ये काम कर रहे थे हमारे लिए, हमारी टीम का हिस्सा नहीं थे लेकिन एज ए टीम वो हमारे लिए काम कर रहे थे, वो ज़ाहरी थे जो जाने वाले थे वो हमारी टीम के लिए काम कर रहे थे। अच्छा, उसने क्या किया, 15-17-18 दिन जितने दिन भी उसने हमारे पासपोर्ट रखे उसने उन लोगों ने हमारे पासपोर्ट चेक ही नहीं किए।
ये कैसे कह रहे हैं कि आप चेक ही नहीं किए?
बता रहा हूँ, शाम के 5 या 6 बजे उन्होंने हमें सारे पासपोर्ट वापस कर दिए।
क्या कह के?
कि इनको आप तरतीब से करके दो।
तो आपने तरतीब से करके क्यों
नहीं दिए? करके दिए थे,
दिए थे,
दिए थे, मेडिकल पासपोर्ट परफॉर्मा जो परफॉर्मे बनते हैं उसके हिसाब से 10-10, 20-20 का पैकेट बना के हमने दिए थे। मेडिकल बाद में जमा कराए थे, परफॉर्मे और पासपोर्ट पहले जमा करा दिए थे। ईरान कॉन्सुलेट बगैर मेडिकल के पासपोर्ट जमा ही नहीं करता है। पहला क्वेश्चन तो मेरा यही था ईरान कॉन्सुलेट से कि आपने मेरे पासपोर्ट ले कैसे लिए बगैर मेडिकल।
एक सवाल इस पे, अगर आप किसी कोई सोर्स इस्तेमाल करेंगे किसी ऐसे आलिम की जब जिसकी रिस्पेक्ट वहाँ बहुत ज़्यादा है, तो वो ये ऐसा कर सकते हैं कि बगैर मेडिकल के?
ठीक कह रहा
हूँ, ठीक है ना। अब सवाल ये है कि आपने जमा करा दिया तो उन्होंने ले लिया, ठीक है, आपने सोर्स ही ऐसी इस्तेमाल किया, आपने नाम ही ऐसा इस्तेमाल किया, फिर अगर वो ये कह रहे हैं आपसे कि दो घंटे के अंदर आप जो है जमा करा दें,
तो जमा कराए,
करा दिए, ठीक है,
दो घंटे मैंने जमा कराए पैसे। जब उन्होंने सारे पासपोर्ट वापस दे दिए फिर तरतीब से बोला देने को, तो हमने ये देखा कि जो रात वाली फ्लाइट के लोग हैं कि उनको ये पासपोर्ट,
सॉरी एक सवाल यहाँ पे और भी बन रहा है कि तरतीब जिसे वो कह रहे हैं वो क्या तरतीब है?
सीक्वेंस वाइज, अच्छा, यानी इसके अंदर सारी गलती
यानी आपका, नहीं है आपका कौन सा ग्रुप पहले जाएगा,
exactly.
फिर कौन सा ग्रुप जाएगा, ये तरतीब
के बारे में,
तो आपने ऐसा करके क्यों नहीं दिया था?
अच्छा, हमने दिया अप्रूवल वाइज,
जो अप्रूवल आई,
जी हमने अप्रूवल, क्योंकि वो कमिटेड हो गए थे कि 1 अक्टूबर को आपके सारे पासपोर्ट दे देंगे।
अच्छा, अब सवाल ये है आपके पास जो अप्रूवल आई है, अच्छा पासपोर्ट आप पहले जमा करा चुके हैं, अप्रूवल बाद में आई है?
नहीं, अप्रूवल तो आ चुकी थी ईरान कॉन्सुलेट में, वीजा जमा कराने से पहले पासपोर्ट अप्रूवल हमारे
हाथ में है। इसका मतलब ये है कि आप अप्रूवल के
साथ थे, अप्रूवल के साथ पासपोर्ट जमा कराए,
ठीक है।
जैसे 50 लोगों का एक मैनिफेस्ट है अप्रूवल का, उन 50 लोगों की लिस्ट के साथ उसको सलार बनाते हुए पासपोर्ट जमा कराए,
जमा करा दिए, ठीक
है, हुआ ऐसे ही,
ठीक
हुआ। लेकिन जब उसने हमें दिए, हमारी भी गलतियां निकलना शुरू हुई हमारे स्टाफ की, हमारी टीम की, जैसे ऑन जाफरी की अगर तस्वीर है, नाम है, तो तस्वीर उस पर अली असगर की लगी हुई है, ठीक है, ये भी हुआ, सारा कसूर उनका नहीं है।
नहीं नहीं, सर, सारा कसूर की बात नहीं है, कसूर ही यही है,
एग्जैक्टली,
मतलब एम्बेसी के पर कसूर नहीं है ना,
बिल्कुल।
अगर फॉर एग्जांपल फॉर्म फिल ही सही नहीं हुआ है, मतलब नोटिस में ये बात आई है कि आपने किसी के घर पे बैठ के फिर सारी रात फॉर्म फिल किए, यानी कि मिसाल के तौर पर मंडे को आपकी फ्लाइट जानी, सैटरडे को आप 2 दिन पहले आप वहाँ मौजूद हैं, और ईरानी कॉन्सुलेट ने 2 दिन पहले आपको पासपोर्ट सारे वापस कर दिए और आपसे कहा कि आप जाएं और इसको फिल करके लेकर आए सही। अब इसके अंदर मैं नहीं समझता कि ईरान कॉन्सुलेट की किसी भी अखबार से गलत।
मेरा एक क्वेश्चन, उसने हमें पहली या दूसरी या तीसरी को ही क्यों दिए, वो हमें पहले ही दे देते
हैं। जो शख्स परसों का
यही चीज
की कारवां की मिस्टेक है,
एग्जैक्टली, मैं तो अपने ऊपर ही आ गया ना, वो तो भला करे, जैसे आपने नाम लिया जो हमारी अच्छी सलाम दुआ भी है, उनके जो टीम मेंबर्स थे उनके साथ जो लोग थे उन लोगों ने पूरी रात में ये सारे फॉर्म तैयार किए।
अब ये जो तैयार करना, ये बता रहा है कि कारवां की मिस्टेक है, एम्बेसी की मिस्टेक नहीं,
क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना कि तस्वीर नाम मेरा है,
नहीं तो मेरा है। तो सर सवाल ये है, आप ऊपर बैठे ना,
जी
ठीक है ना, आपने ये मामला दफ्तर में क्यों नहीं देखा?
ये आप सही कह रहे हैं, असल में हुआ ये कि हमने काम छोड़ा हुआ था अपने निचले स्टाफ के ऊपर,
छोड़ा तो जाता नहीं है ना सर, मतलब आप खुद
हम कुछ और, मैं कुछ और चीजें भी देख रहा था, मतलब जो टिकट्स वगैरह थे वो मैं देख रहा था, लोगों को कन्विंसिंग वो मेरी जिम्मेदारी थी, ठीक है, अकाउंटिंग थोड़ी बहुत मैं देख रहा था,
जो आप बात बता रहे हैं तो उससे तो ऐसा लग रहा है कन्विंसिंग सबकी जिम्मेदारी, जो भी मौजूद था वो ये लोगों को जमा ही कर रहा था,
ज्यादातर जो जब तक ऑफिस खुला हुआ था, जब तक ऑफिस
तब तक जो ऑफिस में आता था आप उसको
ज्यादातर मोस्टली कन्विंसिंग जो था वो मैं ही करता था।
अच्छा, मैं बात को मजीद आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन हम इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं ताकि कि बात बहुत ज़्यादा फैल ना जाए और हम एक ही जगह पे रहें। मामला सिर्फ अभी तक आपके कहने से जो समझ में आए हैं वो ये है कि ये मेनली जो है वो अली जाफर साहब थे जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था कि जी 60,000 के अंदर हम लेके जाएंगे, और उन्होंने जो है वो कुछ मामला वहाँ के तय किए हुए थे कि भाई ये होटल होगा और हम सराय में रहेंगे, उसके अलावा जो है वो वहाँ पे इराक के अंदर हॉल्स होंगे जिसमें वो रहेंगे,
होटल्स थे
वो बाद में आएगा ना, होटल्स होगा, फर्शी निज़ाम,
फर्शी
निज़ाम पर रहेंगे, बहुत ही आप काफिला ही लोग रहता है, अच्छा नीचे रहना था, अच्छा ठीक है। और सर उसके बाद आप ये बता रहे हैं कि सिचुएशन ये हुई कि जो आपके कहने से समझ में आई कि फॉर्म प्रॉपर फिल नहीं हुए, फॉर्म में मिस्टेक्स थी, और वो जब एम्बेसी में जमा कराए गए तो वो उन्होंने आपको फीस भी 2 घंटे में जमा कराने को कहा तो आपने वो करा भी दी, उसके बावजूद उन्होंने फॉर्म वापस कर दिए इसलिए कि वो फॉर्म प्रॉपर फिल नहीं हुए थे, नाम किसी का, तस्वीर किसी की,
exactly.
अच्छा सब फॉर्म ऐसे थे,
नहीं, कुछ
अच्छा कुछ होता ये कि वो जो वीजा ऑफिसर है उसके सामने जो फॉर्म आ रहा है तो उसके बाद वो एक दो तीन चार अगर ऐसे आ गए तो उसने इसी पे फैसला करना चार फॉर्म के ऊपर कि भाई इसे ले जाओ और इसे सही तरह से फिल करके लाओ।
वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
इट मींस कि वो प्रॉपर्ली
आई एग्री, मैं आपसे एग्री करता हूँ। इसमें दूसरी चीज ये थी कि बगैर मेडिकल चेक हुए भी वीजे लगे, वही आउटसोर्स सोर्स लगवा के किसी से भी
बगैर मेडिकल किया, तो ये तो लॉजिकल बात है क्योंकि वो वैसी बात है कि वो अगर आप किसी ऐसे मोतबर आदमी की वो लगाते हैं सोर्स के जिसके नाम पे ये काम हो जाता है तो ये तो मैं समझता हूँ एक अच्छी बात है कि काम हो गया। पहले तो हम मैं ज़ाती तौर पे मेडिकल से इख्तलाफ करता हूँ कि भाई किस बात का मेडिकल, चाहे इराक एम्बेसी हो चाहे ईरानियन एम्बेसी हो, किस बात का मेडिकल। यहाँ से बीमार जा रहा है, मैं शिफा करेगा, ईरान के अंदर बीमार नहीं है क्या, इराक के अंदर बीमार नहीं है।
सही।
तो मेरे ज़ाती ये मेरी ज़ाती राय है कि मेडिकल होना नहीं चाहिए बाहर। लेकिन अब वो ये जो सिचुएशन हो गई तो वो कुछ ऐसा समझ में आई बात के मिस्टेक करवान की थी,
मिसमैनेजमेंट ओवरऑल शुरू से लेके आखिर
तक। इस मिसमैनेजमेंट का जिम्मेदार कौन है सर? अगर आप ऊपर बैठे तो आप जिम्मेदार हैं।
मैं तो ये क्योंकि अली जाफर
के सवाल ये है,
अली जाफर के बाहर टीम को लीड मैं ही करता था।
आप लीड करते हैं, आप चीफ एग्जीक्यूटिव लिखते थे अपने आप।
कार्ड तो हम सबके डायरेक्टर के छपे हुए
हैं,
एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड,
प्राइवेट लिमिटेड है
एसएमसी, सिंगल मेंबर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। ये रजिस्टर्ड सिर्फ एसएमसी में हुई हुई है, बाकी इसका लाइसेंस नहीं था प्रॉपर। जो डीटीएस लिया जाता है वो नहीं था।
आपके पास लाइसेंस नहीं है?
डीटीएस लाइसेंस नहीं
था। बगैर लाइसेंस के आप क्यों काम कर रहे हैं? सवाल है।
कारवां के काम में मैं कुछ इसमें वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कारवां के काम में मोस्टली लाइसेंस होता नहीं है। उसके यूँ नहीं होता क्योंकि पासपोर्ट आते हैं, वीजे लग जाते हैं, क्योंकि पासपोर्ट कैरी नहीं करते हम। कारवां बेसिकली पासपोर्ट रखता नहीं।
आपके दफ्तर से पासपोर्ट
मिले तो मिले, वो इसी बात पे आ रहा हूँ। हमें तो बहुत सारी चीजें करनी चाहिए जो नहीं कर सके, जो नहीं हो पाई।
सर ये तो एक्सक्यूज तो कोई भी नहीं है ना प्रीमियर भाई,
जो नहीं हो पाई। तो हमें तो बहुत सारी चीजें करनी थी जो हम नहीं कर सके, जो नहीं हो
पाई। इराक का वीजा आपका नहीं लगा हुआ था प्रॉपर?
नहीं, इराक की सिर्फ अप्रूवल्स थी हमारे पास और
वीजा नहीं था।
200 से 250 वीजे सिर्फ इशूड हुए थे,
इशूड थे। और आपने ईरान 600 आदमी के तकरीबन 600
तकरीबन 600
चले। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि मैं आपके पास वापस आके दोबारा इस किस्म के सवाल करूंगा, क्योंकि अभी तक ये महसूस हो रहा है कि 100% जो है कारवां की मिस्टेक है कि चेक एंड बैलेंस है ही नहीं। पैसा कहाँ आ रहा है, किधर जा रहा है, कौन वीजे लगा रहा है, कौन नहीं लगा रहा है, जो एम्बेसी में जमा हो रहा है वो किसने किया है। क्यों मतलब एक बाहर का आदमी अब शिदारे कहें कि भाई तुमने वीजे लगा रहे हो, चेक एंड बैलेंस ना हो, पूछे ही नहीं कि तुमने वीजे जमा कराया कि नहीं कराया, तुम्हारी रसीद मिली कि नहीं मिली। तो इट मीन्स कि ये जो कारवां के जो भी लोग वहाँ बैठे हुए हैं ये उनकी जिम्मेदारी। अब मैडम की तरफ चलते हैं और मेरी सवाल मैडम से ये है कि आपने बड़ी हिम्मत दिखाई कि आप 650 लोगों को लेके आप ईरान चली गई और आप बॉर्डर पे चली गई जब आपके पास वीज़ा भी नहीं।
नहीं देखिए, मेरा ये पहला काफिला नहीं था, ये 10वां काफिला था।
ये तो मैं
पहले काफिले लेके गई हूँ, आशूर से आशूर, ये 10वां काफिला था मेरा।
ठीक।
और शुरू के 2 काफिलों मेरे साथ गए थे अन जाफरी, उसके बाद याम फातह, उसके बाद मैं खुद ही जाती थी क्योंकि मुझे पर्शियन आती है, मैं रही हूँ कुम में।
जी जी।
तो अब इन लोगों ने कहा था कि आप कुम निकलेंगे, क्योंकि पहले हमारी ईरान की ज्यारतें थी, ठीक है, फिर बाद में करबला था, पहले हम लोग ईरान ही जाना था ना, इसलिए हम लोग पहले निकल रहे थे। जो 5 तारीख की फ्लाइट हुई थी वो तकरीबन 22 या 24 जिलहज थी, 22-23 जिलहज थी ना, 8 दिन पहले जा रहे थे मुहर्रम से कि मशहद और ईरान को कुम को करके फिर करबला निकलेंगे। ये प्लानिंग में थी कि डायरेक्ट मशहद जाना था, कुम भी नहीं जाना था। मशहद का होटल मैंने बुक किया खुद, करबला का होटल जो मैं शव्वाल में गई थी मैं बुक करके आई थी। तो अब इन लोगों ने कहा कि आप पहला काफिला, क्योंकि काफिला एक साथ थोड़ी ही है 600, मैं तो 100 लोग लेके गई थी, पहली फ्लाइट 100 की गई थी, फिर 50 आए, फिर 100 आए। जैसे अब मैं नहीं जाऊंगी तो इनको वहां कौन देखता, क्योंकि मुझे परेशान आती है, हमारी टीम में से किसी को परेशान नहीं आती।
नहीं मैडम, मेरा जो सवाल है वो सीधा सीधा ये है, जब आपके पास इराक का वीजा नहीं है
हाँ,
तो आप इराक बॉर्डर पे गए क्यों?
सवाल, इराक के वीजा आना शुरू हो गए थे ना, 250 आ गए थे, इन लोगों ने कहा आप जैसे जैसे जाएं,
जो 100 लोग आपके साथ गए थे उनके वीजे मौजूद थे?
नहीं, उनके वीजे भी नहीं मौजूद, क्योंकि हमें बॉर्डर तो एक साथ ही क्रॉस करना था ना, 100 को अलग थोड़ी करना था।
जो 250 जो थे उनके क्यों नहीं ले गए फिर आप?
तो 250 वीजे भी नहीं पहुंचे मेरे पास।
वो क्यों नहीं पहुंचे?
वो मुझे क्या मालूम, अली जाफर ने, अली जाफर से मैं रोज फोन पे भी यही कहती
हूं। मैडम मैं यही तो सवाल कर रहा हूं, जब आपके पास वीजे आए नहीं है तो आप गई क्यों बॉर्डर पे?
अगर मैं बॉर्डर नहीं जाती, अगर मैं ईरान यहां से नहीं जाती, जो हाल ऑफिस का हो रहा था, जो हाल लोगों का, मुतासरीन जब बने नहीं थे उस वक्त जो हाल था कि क्यों नहीं निकले, जाहिर है पहली मुहर्रम आ गई थी।
250 वीजा आप कह रही हैं, 250 वीजे आ गए थे, वो किसके पास थे?
वो अली जाफरी के पास थे ना, देखिए जाफर नकवी को अली जाफर देख रहे थे।
अच्छा,
इराक के वीजों का सेटअप जाफर नकवी का पूरा अली जाफर के पास था।
अली जाफर के पास
उसने मुझे कहा कि आप बिल्कुल इत्मीनान रखें, आप निकलें, जैसे फ्लाइट आएगी मैं आपके पास इराक के वीजे भेज दूंगा, आप टेंशन मत लें। और मैं अप्रूवल लेके मैं चली गई। 1260 की अप्रूवल थी, टोटल अप्रूवल थी, वो भी हाथ में अप्रूवल लेके नहीं गई, वो भी व्हाट्सएप पे आई।
250 वीजे तो आपके अपने पास हाथ में नहीं थे?
हाथ में नहीं थे, अभी भी वो जाफर नकवी के पास है।
अच्छा, अभी भी तो खैर, अब तो खैर रखे हैं अपने पास,
वो तो एक्सपायर ही हो गए, बेकार ही हो गए। तो अब जब मैं ईरान इसलिए गई कि जब अगर यहाँ से नहीं निकल रहे थे तो
यहाँ जाहिरीन को शिकायतें हैं। और वो
देखिए ईरान में पहुंची हूँ, मैंने पहले से कुछ ऐसी जगह पहले बता दें, फर्शी निज़ाम होगा, कोई होटल, कोई बेडरूम और कोई बेड नहीं मिलेगा, ये अनाउंस हो गया था सबसे। इसीलिए कहा था बूढ़े नॉट अलाउ, लेकिन कुछ बूढ़ों ने कहा हम देख लेंगे, आप टेंशन मत लें। कोई कुछ लोगों ने कहा हम वहाँ होटल ले लेंगे, आप टेंशन मत लें, हम फर्शी नहीं सोएंगे। तो मैंने कहा चल ठीक है। अब जब मैं गई तो मैंने जो जगहें वहाँ बुक करवाई थी अपने भाई के ज़रिए से, तो उसने मुझे जगहें, बस आई हुई थी बॉर्डर पे, वहाँ पे एयरपोर्ट पे बसें आई हुई थी, हम लोग जो पहली फ्लाइट गई है वो बसें मैंने पेमेंट भेज दी थी ना वहाँ पे ईरान में, जो हमारे दोस्त है भाई का, उसने की हुई थी काशिफ ने। हम बसें पहुँची, हम लोग कुम पहुँच गए थे रात में तकरीबन 11:30 हम लोग को पहुंच गए थे।
उस वक्त तक लोगों को जो आपके साथ गए थे कोई
घर नहीं भाई, अब रात के 12 बजे भी लोगों ने कहा खाना चाहिए, लंगर चाहिए, तो पकाया मैंने, क्योंकि मेरा कुक नहीं पहुंचा था।
आप लोग खुद पकाया?
हाँ, मतलब लोग तो कह रहे हैं भूखे प्यासे रह गए, वो तीनों बाप खाना बना, राशन मैं खुद खरीदती थी 100, फिर सुबह होते 50 और आ गए थे। मैंने खुद वहाँ पे सारी परचेज किया।
किस जगह ठहरी थी आप?
मैं ख्याबान एरम पे ठहरी थी, साहिल था और 2-3 घर थे। अच्छा, जो लोग आते जा रहे थे ना उनका मैं खुद भी इंतजाम कर रही थी, क्योंकि एक आध जगह जो उन लोगों ने देखी थी वो मुझे पसंद नहीं आई थी कि उसमें जरा सा गंदगी ज्यादा थी, जो शायद
आते जा रहे थे मैं इंतजाम करती जा रही थी।
हाँ, 150 की मैंने 300 का इंतजाम कर लिया था, लेकिन एक आध जगह जो लोग आके ठहरे रात में, मुझे पता चला कि उनको जगह पसंद नहीं आ रही, मैंने उनसे कहा बस आप सुबह होने दें, रात को आए आप लोग, सुबह मैं आपको जगह चेंज करवा दूंगा। मैंने यही जगह चेंज भी करा दी, एक जगह वहीं पे उसी जहाँ जिस गली में हमारे घर थे ना, घर लिए थे बड़े बड़े ना, जैसे होते हैं 2 बेड 3 बेड 4 बेड, इस तरह से सब वो अटैच बाथ भी थे, बाद में फर्श ही था, कारपेट बिछे हुए थे।
बॉर्डर पे क्या
वाकया
हुआ आपके साथ? बॉर्डर पे ये हुआ, तो आपने किस तरीके से, जब आपके पास सिर्फ अप्रूवल थी और आपके पास वीजा तो है नहीं, अब आप
नहीं जा
रही एंटर नहीं हो सकते यहाँ पे,
एंटर नहीं,
लीगली भी एंटर नहीं हो सकती। अब मुझे ये बताइए, आपने वहाँ पे फिर एक तो जाना ही खतरनाक था, जब आपके पास ये आप अपनी जो जहाँ पे ठहरी हुई थी वहां से, आपको पता ना मेहरान बॉर्डर पे कितनी सर्दी होती है,
रास्ता भी लंबा,
कितना रास्ता खराब, आप ये जानते हुए भी एक नहीं 10 दफा जा चुके
हैं। ठीक है,
सवाल ये है कि आपके पास यहाँ पे अली जाफर हो, चाहे और नकवी हो या कोई दूसरे साहब हो, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास वीजे हैं हम आपको दे रहे, तो आपने उनसे डिमांड क्यों नहीं
की?
तो फिर आप
अब जैसे ही मैं जो फोन को एक नई बात पर चलती थी, जो अव्वल तो मैं तो पेमेंट के लिए फोन कर रही थी।
हाँ।
क्योंकि मैं जब मेहरान कुम से मेहरान निकल रही थी तो मेरे पास पेमेंट नहीं थी, पेमेंट नहीं थी जो इन लोगों ने पेमेंट भेजी। अली जाफर ने मुझे एक दफा 5 लाख भेजी, मैंने फौरन बसों को और पेमेंट करके बसें भेज दी एयरपोर्ट पे, बसें एयरपोर्ट पे जा रहे हैं हमारे उस पर जा रही थी ना। और अब जो हम कुम से मेहरान पहुंच गए थे, मैंने कहा कुम मत लेके जाना, डायरेक्ट मेहरान लेकर आना, तहरान से मेहरान लेकर आना।
इसके बावजूद कि वीजा नहीं है, मैं
वीजे नहीं थे। अब इन लोग मतलब जाफर से मेरी जो बात हो रही थी, तो उसने कहा कि लास्ट फ्लाइट पे आके वीजे पहुंच जाएंगे,
कि जब तक आपके हाथ में वीजे नहीं आए आप
नहीं जाना चाहिए था। सही कह रहे हैं, हमारे कुम में एक एजेंट से बात हुई,
लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ कि एक बच्ची मर गई सर्दी की वजह से और प्रॉब्लम की वजह से, उसमें भी हमने
कहा लास्ट हमारी कुम में एक एजेंट से बात हुई, उसने कहा आप अप्रूवल लेके बॉर्डर पहुंचे, मैं बॉर्डर पे हूँ, मैं आपकी अप्रूवल से आपको क्रॉस करवा दूंगा बॉर्डर। ये एजेंट था वहाँ पे ना, जो इराक की बॉर्डर पे एजेंट होती
है। और आप जैसी खातून जो 10 दफा जा चुकी है, वो इस बात में
हाँ,
हो जाएगा।
बिल्कुल। फिर मैंने लोगों से कहा कि जो वीजे मौजूद हैं वो तो किसी फ्लाइट से भेजो, जाफर नकवी उस वक्त कर्बला जा चुके थे। सही है, अब एजेंट से बात,
जाफर नकवी
जो वीजे इशू कर अल इराकी शिरकत अल इराकी के थे। ठीक है, अब मैं बॉर्डर पहुंच गई, मैं अंदर चली गई ना इराक में, ऑफिसर से बात करने गई कि मैं ये अप्रूवल लेकर आई, तो उसने कहा ये अप्रूवल ये सारे लोग मौजूद हैं। मैंने कहा सारे नहीं, इसके आधे लोग मौजूद हैं, क्योंकि अप्रूवल 1200 की थी तकरीबन, और लोग हम लोग 650-600 लोग थे। तो उसने कहा कि इसके वीज़े कहाँ हैं? मैंने कहा वीज़े हमें एजेंट ने नहीं दिए अभी तक, और ये यकीन है हमें हाथ में नहीं दिए थे, जो आपका एजेंट है अली राखी का। और नसीम अल-फिरदौस का, तो नसीम अल-फिरदौस का बंदा एजेंट जो था वो आ गया बॉर्डर पे, उसने मुझसे बात की, उसको पर्शियन आती थी, उसने मुझसे बात की, तो मैंने कहा ये तुम्हारी शिरकत के हैं नसीम अल-फिरदौस के, कहा तो मैंने कहा मुझे क्रॉस कराओ बॉर्डर, अप्रूवल तो है ना भाई, अप्रूवल आधा वीजा होता है, अब बगदाद से अप्रूव होता है तो अप्रूवल आती है,
तो पहले आधी पेमेंट होती है फिर वीजा,
हाँ पेमेंट के साथ ही आती है, पेमेंट जाती है तो अप्रूवल आती है, तो मैंने कहा बगदाद से तो अप्रूव होके आइए, आइए ना अप्रूवल, तुम्हारी शिरकत की है नसीम अल-फिरदौस के जाफर नाम का लड़का आया था, तो उसने मेरी एक साहब से बात करवाई जो करबला में रहते हैं अब्बास नकवी, उन्होंने मुझसे बात की, वो उर्दू बोलते हैं करबला में ही रहते हैं, तो उन्होंने कहा बीवी क्या मसला है, मैंने कहा ये मसला है, कंपनी का नाम क्या है, कार्बन अपराइड, अच्छा वो जो सस्ता पैकेज आपने 60 का निकाला था बड़ी फेसबुक पे ये वो, मैंने कहा हाँ आपने सारी बातें आपको पता है, मैं क्या बताऊँ, आप क्रॉस करवा दें बॉर्डर, तो उन्होंने कहा चले मैं आप फिक्र नहीं करें, मैं आपको एक घंटे में रिलीफ दिलाता हूँ, ये उन्होंने मुझसे कहा, उर्दू में बात कर रहे थे, मैंने कहा चले बहुत शुक्रिया आपका, अब उनकी अब्बास नकवी
बॉर्डर पे पहले दिन बात हुई,
पहले दिन पहुँचते ही मैंने अंदर जाके जब उसने अप्रूवलें देखी तो उसने फौरन ऑफिसर से जाफर को बुला लिया, नसीम अल-फिरदौस के नुमाइंदे को बुला लिया, तो उसने कहा कि आपको मैं अभी रिलीफ दिलवाता हूँ, अब मैंने लाइन भी बनवाना शुरू कर दिया ना, उसने कहा पहले लेडीज़ और बाद में जेंट्स, इस तरह से उन लोगों ने कहा कि पहले लेडीज़ को निकालेंगे बाद में जेंट्स, अब नसीम अल-फिरदौस का जो नुमाइंदा आया था उसने अब्बास नकवी से क्या अरबी में बात की कि जाफर नकवी ने मुझे पेमेंट नहीं करी है, जो उसने मुझे बाद में बताया, मैं फिर उसने मुझे फारसी में कहा कि असल में नसीम अल-फिरदौस वालों को जाफर नकवी ने कोई पेमेंट नहीं करी, अप्रूवल जरूर ली है हमसे, हमें पेमेंट नहीं करी, अब मैं आपको बगैर पेमेंट के कैसे छोड़ दूं, $110 होते हैं लेकिन कम से कम लूंगा तो $82 तो लूंगा मैं, $82 यानी 8,200 रुपये, अब यार 8,200 रुपये मेरे पास तो थे नहीं और इतने लोगों के, तो मैंने उसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा कुछ आप कम कर लें 20-30 कुछ ऐसा कर लें, 2-3 हज़ार हो तो चलो आदमी अरेंज भी कर ले, सुबह के बाद मैंने कहा सुबह पूरी रात हम यहाँ कैसे गुजारेंगे, मतलब फारसी बोल रहा था वो, फिर अब्बास नकवी कहने लगे देखिए बीबी मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये नुमाइंदा, क्योंकि कोई शिरकत आपको एक्सेप्ट करेगी तो आपको बॉर्डर क्रॉस होगा ना, मैं खाली ओके कर दूँ तो मैं ये लोग नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इराक की शिरकत को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है आपको, फहरहाल उसने जाफर ने ऐसी बात करी फिर वो चला गया, फिर हम उसको फ़ोन नंबर देखे गया मिलाते रहे फ़ोन, उसने दोबारा सुबह आया लेकिन उसने वही बात की $82, फिर अब्बास नकवी को मैंने फ़ोन मिलाया दोबारा दोपहर में, तो कह लेंगे बीबी मैं आपके लिए वज़ीर दाखिला से बात करके करता हूँ लेकिन आप पेमेंट बताएं कि कितने बजे तक आप मुझे दे देंगी, फिर मैंने पाकिस्तान फ़ोन किया अली जाफर को, मैंने कहा अली जाफर जितने हो सके आप पैसे भेज दें क्योंकि यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है, सर्दी है, बारिश हो रही है, बच्चे बूढ़े बीमार हो जाएंगे, बड़ा मसला है बॉर्डर पर, और ज़्यादा वहाँ कोई किचन थोड़ी था, बॉर्डर खाना थोड़ी था, मैं वहाँ कहाँ से खाने वाने देती, वही बात है ना बॉर्डर आपको पता है क्या, जितना हो सका जो मैंने केक बिस्किट्स वगैरह लोगों से कहा कि ये मंगा के लोगों में तकसीम करें, जितना चाय का सामान था तो चूल्हा ईरानियों से लेके चाय का लड़कों ने खुद ही जो मलिर वगैरह के लड़के,
अली जाफर को सेकंड डे फोन किया आपने पैसे के लिए,
हाँ सेकंड डे फोन किया, बिल्कुल सेकंड डे फोन किया, उसने कहा आप परेशान ना हो मेरे पास अभी अमाउंट 10 लाख का है, मैं आपको फौरन भेजता हूँ, मैं इत्मीनान में हो गई कि 10 लाख आएंगे, कुछ ज़ायरीन से रिक्वेस्ट की जाएगी, कुछ खवातीन थी बड़ी कोऑपरेटिव थी, उनका समीना हमसे शेयर करो,
कितने पैसे की जरूरत थी,
पैसे तो बहुत ज़्यादा चाहिए थे लेकिन कुछ ज़ाहिर है अगर आप 82 के हिसाब से लगाइए 600 लोगों का तो क्या बनेगा,
बहुत सारा बन जाएगा,
60 लाख तो 50-60 लाख, उसने कहा मैं अभी
10 लाख भी होता तो क्या काम था, फिर भी
नहीं कुछ ज़ाहिरीन मुझसे कह रहे थे कि हम अरेंज कर देंगे आप फिक्र नहीं करें, हम लोग जो कर सकते हैं हम करेंगे,
लेकिन 50-60 लाख रुपये और 10 लाख रुपये इसका मतलब ये है कि तकरीबन 90% लोगों ने पैसे करने थे,
90% नहीं तो हाँ 80%
लोगों ने इसकी यहाँ पे मिस्टेक सिर्फ और सिर्फ ये है कि वीज़ा नहीं था,
वीज़ा नहीं था,
मकसद ये कि आप देखें ना एक मैं जो आप लोगों से शिकायत कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ, एक इंसान ने गोली चलाई हवाई फायर और कोई मर गया, इसको कहते हैं कत्ले खता, क्यों मारना चाहता नहीं था लेकिन मर गया, इसकी सज़ा है, ऐसा नहीं है कि आदमी नहीं यार ठीक है कोई बात नहीं यार तुमने तुम मारना तो नहीं चाहते थे ना, हो गया, लेकिन ऐसा है नहीं। अब एक ये सवाल जो मैं जो अभी मैं ऑन से ये कर रहा था कि भाई जब आप ये मिसमैनेजमेंट है कि आपने जो है वो चीज़ें ही कंप्लीट नहीं की जो आपने बाद में की, आप बाद में बैठे और आपने उसके ऊपर सारी चीज़ें कंप्लीट की, और आप यहाँ अगर हम ये कहेंगे यार ईरानियन कॉन्सुलेट ने गड़बड़ की है तो ये पॉसिबल नहीं है, दूसरी अहम तरीन चीज है कि वीजा है ही नहीं। मतलब मिसाल के तौर पे आपसे कोई ये कहे कि आपने जो है मेहरान बॉर्डर पैदल जाना है, मैं तुम्हें रस्ते में गाड़ी दूंगा, तो आप पैदल चलना शुरू हो जाएंगे, इस आसरे में गाड़ी आएगी
नहीं
तो सवाल होना चाहिए मेरे पास वीजा हो तो मैं मेहरान बॉर्डर जाऊंगा, मेहरान बॉर्डर जाके करूँ क्या।
असल में मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये उस अली जाफर पे और हमने उस पर भरोसा करते हुए वहाँ चली गई।
ठीक,
वो बोलता रहा कि आपको अगली फ्लाइट से वीजे मिल रहे हैं, अगली फ्लाइट से वीजे मिल रहे हैं।
इन द मीन टाइम अली जाफर आपसे कॉन्टेक्ट में था?
8 मुहर्रम तक मेरे साथ कॉन्टेक्ट में था, 2:30 बजे तक।
उसकी लोकेशन क्या थी, वहाँ था या यहाँ था?
नहीं नहीं, कराची में,
कराची में आपसे मुलाकात हो रही थी?
नहीं, फोन पे बात हो रही थी। 7 मुहर्रम की रात तक वो मेरे साथ था, 7 मुहर्रम को अपने बहनों के साथ चला गया था।
अच्छा,
ठीक है। उसमें सुबह मुझे कोर्ट वोट जाना है, कुछ काम है ये वो, मैंने ठीक है भाई। फिर जब इनका उससे बात करने के बाद इनका मुझे फ़ोन आया, इन्होंने बोला कि भाई तुम पैसे भिजवाओ। मैंने अली भाई को फ़ोन किया, मैंने भाई इनको जो भी पैसा पड़ा हुआ है आपके पास जहाँ भी है वो अली जाफर से उसको गैदर करो और उसको इस अकाउंट नंबर में जो वहीं का एक बंदा था रूह अल्लाह जहाँ पे उसने पहले भी जमा कराए थे उसी में आप जमा करा दो जाके पैसे। 2:30 बजे के बाद तो मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और मोबाइल अब तक स्विच ऑफ ही है।
अच्छा, जिस वक्त आपने उनसे अली जाफर से सवाल किया था उसको अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हुए थे?
10 लाख रुपये ना,
10 लाख रुपये पड़े हुए। अच्छा ठीक है, ये 10 लाख रुपए मौजूद थे, लेकिन बाहर वही वाली बात
नहीं, असल में हुआ ये जो बॉर्डर पे इतना टाइम गुजरा उसकी वजह एक तो बात
सॉरी अली जाफर जो आप कह रही हैं आप 10 साल से काम कर रही हैं?
नहीं, 10 साल से नहीं, 1 साल,
10वां
काफिला,
1 साल से ही काम,
1 साल
ये पूरे साल से अली जाफर आपके साथ हैं।
हाँ, पहला काफिला आशूर का जो लेके गई थी और अब जो आशूर के साथ 10वां था, अगर ये चला जाए।
उसने चेलुम पे कुछ ऐसा काम किया कि रश बहुत था, लोग बाय रोड जा रहे थे, इसने सब लोगों के बाहर के टिकट ले लिए।
अच्छा,
तो लोग भी खुश हो गए यार कि इतना रश है, बहुत ज़ईफ लोग थे उसमें भी, तो ये कॉन्फिडेंस हमारा लेता चला गया।
सही सही,
मतलब बाय रोड वालों को बायर भेज दिया इराक। अच्छा। से ईरान पेमेंट नहीं दी थी उन्होंने, पेमेंट अपने पास से उसने जहाज की दी,
जहाज की
जो भी टिकट बना उसका साथ
37 लोग थे।
आप जब बता रहे अली जाफर आपसे 8 मुहर्रम तक कॉन्टेक्ट में था,
8 मुहर्रम
उसके बाद से कॉन्टेक्ट में नहीं है, अभी तक नहीं है।
और आपने अभी किसी सोर्सेज से मालूम पड़ता है कि वो कहीं मियांवाली में है, कहीं कहीं है, वहाँ चेक भी करवाया है अपनी जो हमारी सोर्सेज है तो वहाँ पे वो नहीं मौजूद,
उनका पासपोर्ट हमारे पास है,
लेकिन लोगों को पंजाब में वो कहीं दिखा भी है।
अच्छा,
उसका जो पासपोर्ट था वो हमारे पास है, हमारे एक बंदा उसी के घर पे पड़ा हुआ वो पासपोर्ट। हमें न्यूज़ मिली कि सरगोधा में इसने नया पासपोर्ट अपना अप्लाई करवाया है, तो हमने एक वकील से कोऑर्डिनेट करके एक एप्लीकेशन बनवाई जो उसकी कॉपी इसके अंदर लगी हुई है कि वो FIA इस्लामाबाद और मिनिस्ट्री इंटीरियर ऑफ इस्लामाबाद, IG पंजाब और IG सिंध के नाम वो एड्रेस हुई हुई है कि इसका NIC और जो पासपोर्ट जो बन रहा है वो रोका जाए। और यहाँ भी हमने जो सरगोधा में डायरेक्टर ऑफ पासपोर्ट ऑफिस हैं सरदार मेहताब साहब, उनको भी फ़ोन करवाया था कि जब ये आए तो इसको बिठा लीजिएगा।
ठीक है,
तो फिर वहाँ पे हमारे लोग थे जिसको यहाँ तक ले आते, तो इस वजह से वो नहीं हो पाया, उसको इन्फॉर्म हो गया।
यहाँ तक ना बॉर्डर पे 2 से 3 दिन तो जब अब्बास नकवी के बाद मेरे पास बशीर नजफी के नुमाइंदे का भी फोन आया, उन्होंने भी मुझसे यही कहा कि आपकी अप्रूवल है आपके हाथ में? मैंने कहा हाँ बिल्कुल है, वो लोग हैं मौजूद जिनके अप्रूवल है, मैं कहा तो कह लें अच्छा ठीक है मैं कुछ करता हूँ।
मसला है वीजे का और ये कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है, ये हुकूमती मामलात होते हैं। मैंने सुना ये कि आपसे लोगों ने वहां आपको मना किया कि आप बॉर्डर पे ना जाएं अभी जब आपके पास वीजा नहीं
है। उसके लोगों ने कहा बॉर्डर लेके चलो, मतलब ऐसे हालात हो गए थे, चीख पुकार हंगामे वाला, बॉर्डर तो लेके चले, हम निकलेंगे बॉर्डर से, हमको पता है जुगाड़ है बॉर्डर की, हम निकलेंगे। मैं वाकई बॉर्डर सारे टाइम इतना हो गया था ना, 6 मुहर्रम हो गई थी, 6 मुहर्रम को हमने कुम छोड़ा है, 6 मुहर्रम को हमने छोड़ा तो 7 को हम बॉर्डर पे थे, सारे 7 की सुबह हम लोग बॉर्डर पहुंच गए थे। पहले उसने एजेंट ने कहा कि जो सारे आपके पास अप्रूवल है ना उनमें से उनको टिक करके दें कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं, ये काम किया हमने। एजेंट ने कहा कि मैं उनको फिर करता हूँ अलग ना, उन लोगों को अलग कर दें, टिक कर दें उन लोगों के नाम, ये सब ने बैठ के किया, जिसके रेफरेंस के लोग थे उन्होंने सब ये काम किया।
अरे जाफर नकवी साहब का बेसिकली प्रॉब्लम ये है,
जाफर नकवी साहब वीजा नहीं दिया, 55 लाख दिया है, उसकी रसीद मौजूद है। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि अगर आपने पेमेंट ली थी तो आपका क्या इरादा था, आपने क्यों नहीं दिया? आप कह रहे हैं अप्रूवल के पैसे हो गए ये सारे, आपसे तय हुआ था कि अप्रूवल आए वीजे साथ है, अप्रूवल आए साथ वीजे आए, अब वो तो उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि हाँ पेमेंट भी करिए करिए, लोग वहाँ कह रहे हैं बॉर्डर मुझसे आप अभी उनको फोन करके स्पीकर ऑन करके मुझे बताएं कि उसने 5 लाख दिए या 55 लाख दिए, मैंने उसी वक्त फोन मिला दिया, लोग मतलब जाहिर है उस वक्त जो लोगों की हालात थी गुस्से में थे वो जेन्युइन था उनका गुस्सा, अब मैंने फौरन फोन मिलाया उनको और
जाफर साहब के बारे में जो मैंने सुना है बहुत पुराना आदमी और सिर्फ आप ही नहीं बल्कि तमाम कारवान वाले उनसे काम करते हैं, तकरीबन तमाम कारवान वाले और जितने भी बड़े बड़े नाम है हमने उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो सब उनसे काम करते हैं। अब
पिछले
इतना ज्यादा काम करने वाला आदमी किस तरह से 55 लाख गायब कर सकता है, ये एक सवाल है।
55 लाख गायब के अलावा जब मैं बॉर्डर ये जो लोग
वो अभी भी काम कर रहा हूँ आपके दे देखें, मतलब ये 55 लाख रुपए खाने के बाद आदमी वैसे भी काम कर रहा था, बड़ी ताज्जुब की बात है कि वो वैसे ही उसका दफ्तर खुला हुआ वैसे ही वो बैठा हुआ वैसे ही काम कर रहा हूँ।
लेकिन हमारे अप्रूवल्स को इराकियों ने फेथ क्यों कहा, गलत क्यों कहा कि आपकी बगदाद में एंट्री नहीं है, डाटा ही नहीं है आपके इन अप्रूवल्स का,
इन नामों का
डाटा नहीं है बगदाद में। अच्छा मैं जब इराकी से बात करूं मुझे एक जवाब दे, बगदाद फोन हुआ है अप्रूवल हो आपको अप्रूव कर देगा ना, ओके करेगा, मैं आपको यूं छोड़ूंगा।
अच्छा अप्रूव क्या कह रहे हो, अप्रूवल ही नहीं है?
नहीं है अप्रूवल वहाँ
बगदाद में,
बगदाद से आती है ना,
बगदाद में अप्रूवल ही नहीं है
इन नामों
जो भी नाम
जो, आप, जो आपने 600 नाम जिनको दिए होंगे, 650 नाम जो नाम नामों की अप्रूवल बगदाद में मौजूद
नहीं।
जबकि आपको यहाँ कितने अप्रूवल दे चुके थे वो
1260 की
थी, अप्रूवल सबकी दे चुके थे, इसका मतलब यह है हम ये सोच सकते हैं कि वहाँ का एजेंट ये कह रहा है कि अप्रूवल है ही नहीं, नाम ही नहीं है।
वो मुझे कह रहा था,
एजेंट कह रहा है या वहाँ का क्या कौन कह रहा है,
ऑफिसर्स कह रहे थे वहाँ पे मुझसे, अब मुझे कह रहा है मेरा पासपोर्ट देखा, इराक का वीजा देखा, एंट्री देखी।
आपने जाफर नकवी साहब के खिलाफ कोई एक्शन लिया, कुछ सवाल किए, बात की उनसे?
अभी कल तो आए वो, कल या परसों तो आए वापसी इराक
से,
जो मुझे नॉलेज में।
तो आपने मिलने की कोशिश की उनसे?
अभी फिलहाल नहीं की कोशिश उनसे, क्योंकि अभी हम खुद चाह रहे थे कि हम भी,
क्योंकि सर बात सर ये कि एक आदमी अगर 55 लाख रुपए लेके गायब होता है, वो गायब होता है, वो गायब ही नहीं हो रहा, वो दफ्तर खोला हुआ है, वहाँ बैठ रहे हैं लोग,
हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन जो भी
बात है सवाल तो करेंगे, सवाल तो करेंगे
ना,
बात साफ होनी चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि वहाँ का जो ऑफिशियल्स हैं जो ये सारे मामला देखते हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपके इन 600 लोगों की जो लिस्ट आपने दी है उनकी अप्रूवल है ही नहीं,
बगदाद
है ही नहीं, बगदाद में मौजूद नहीं, यही कह रहे ना। और वो जो वहाँ के एजेंट साहब के पास आ रहे थे वो क्या कह रहे थे?
वो ये वो भी अप्रूवल दे के अंदर लेके जा रहे थे, वो तो आपको पता है ना पैसा दे के अंदर से वो भेज देते हैं, अभी पहले कहने लगा 80, फिर कहने लगा नहीं $60, फिर कहने लगा $50, अब जा रहे वो एक रेट ही फिक्स नहीं कर रहा था। मैंने कहा जो भी एक है अंदर, तो उन्होंने कहा कि नहीं आपका पासपोर्ट दे के मुझसे कहना आप चली जाओ, कोई भी 50 लोग लेके चली जाओ। तो अब जब अप्रूवल ही नहीं है तो मुझे और मेरे 50 लोगों को क्यों छोड़ रहा है, खुद उसने मुझे पर्शियन में कहा।
हाँ तो उसका
ये जो लोग है ना इनको मैं नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा क्यों, क्या इस सारे की सालार तुम हो? मैंने कहा मैं सालार हूँ। उसको अब तो यकीन नहीं आया।
मतलब मैडम उसका अप्रूवल, इसका मतलब अप्रूवल सही थी?
नहीं, वो ऐसे ही छोड़ रहा था मुझ पर एतमाद करके कि आपकी मैं जमानत ले लूंगा, आप चली जाइए, कुछ औरतें लेके 50 चली जाइए, ये मुझे उसने इराकी ने बोला।
तो 600 भी छोड़ सकता है,
यही तो मैंने कहा नहीं जेंट्स को, क्योंकि जेंट्स हमारे साथ हर तरह के थे ना। अब वो पता नहीं उसने क्या खबर उड़ी हुई थी कि दाइश भी है इसमें, अली और नुसैरी।
मैं ये बात समझ पाया हूँ कि आप ये कह रही हैं कि आपके पास अप्रूवल थी, वीजा नहीं था। पहली मिस्टेक तो ये कि आपको वीजा ना होने पे जाना ही
नहीं चाहिए था।
इसकी ये आप भी कायल हैं इस बात की?
हाँ,
बिल्कुल। और मैं भी इस बात के कायल हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। इस वजह से लोग जहमत में पड़े, तकलीफें उठाई, और मेरा ख्याल आपके साथ भी कुछ जाती
असल में आशूर था ना
जी।
तो जब हम चले गए तो हमें उम्मीद थी कि वीजा भी किसी फ्लाइट में आ जाएगा, गुफ्तगू हो रही थी।
आपसे झगड़ा भी हुआ है किसी का?
झगड़ा, हाँ वो झगड़ा भी बताती हूँ अभी आपको। तो अब जब मुझे इराकी ने कहा ना कि ये आज तो 9 मुहर्रम हो रही है, खुल जाएगा, ऑन अराइवल हो जाएगा, वो भी इराकी ने मुझसे कहा। यानी 3 दफा मुझे उम्मीद हुई, एक अब्बास नकवी से हुई, एक नजफी बशीर नजफी के नुमाइंदे ने बात करके बोला, फिर इराकियों ने मुझसे बोला।
अच्छा, लोगों ने शिकायत की कि आप बॉर्डर से भाग गई?
मैं बॉर्डर से भागी नहीं हूँ, जब मारा गया है मुझे, और मैं 3 दिन की भूखी प्यासी थी, मैं ना कुछ खा रही थी ना पी रही थी
3 दिन। अगर गड़बड़ा जा रहा है
उसके बाद मुझे होश नहीं रहा, जब कोई चीज मेरी आंख पे जोर से लगी।
वो कुछ कह क्या भी दिया था?
मैंने किसी
पासवर्ड
कुछ भी नहीं कहा, मैंने कुछ भी नहीं
सुना। खुदा ना खास्ता मर्दों ने आपका हाथ उठाया?
नहीं मर्द ने नहीं
उठाया, ऐसा नहीं है,
नहीं
खवातीन ने,
हाँ एक लड़की थी उसने हाथ उठाया था। अच्छा। और जब मुझे एकदम लगी मेरे आंख पे कोई चीज, सारे मर्द मतलब मैं बीच में बैठी चारों तरफ मर्द थे,
कोई चीज फेंक के मारी या हिट किया आपको?
कुछ हिट किया था, कुछ हिट किया था।
अच्छा, ये नहीं मालूम,
अंधेरा इतना था ना बॉर्डर पे, लाइटिंग थोड़ी थी। अब जब मैं लगी तो मैं एकदम से कमजोरी, तबियत मेरी अजीब सी, तो मैं एकदम कैफियत अजीब सी हो गई थी, तो मैं लेट गई थी कुछ गुनूदगी वाली कैफियत, बेहोशी वाली कैफियत। तो ईरानियों ने एम्बुलेंस मंगवाई है, उन्होंने एडमिट किया है मेहरान हॉस्पिटल में। मैं भागी नहीं हूँ, और अगर जो मेरे साथ था वो उस बात की गवाही देगा कि मैं उस वक्त भी यही कह रही थी कि मुझे बॉर्डर लेके चलो, मैं करबला ले
जाऊंगी। आपको पता है रिपोर्ट से बॉर्डर पे
बहुत कुछ आया,
मीडिया पे तो लोग ये भी कहने, खाना ही नहीं दिया आप।
आप, आप, ये भी एक सवाल है। हाँ। मैं आगे जाऊँ, मैं सवाल कर लूँ कि आप 3 दिन बॉर्डर पे रही, लोगों को क्या खाने पीने के लिए दिया आपने?
भाई खाना पीना हमारे बॉर्डर पे वही था ना, चाय बिस्किट्स ये वो इसी तरह का था।
तो आप क्या मंगाती थी बाहर से?
वो जो एक दुकान थी बॉर्डर पे, एक ही दुकान थी उसमें, ईरान बॉर्डर पे होती थी। अब हमारे पास जब एग्जिट लग जाता है तो हम बार बार अंदर बाहर भी नहीं कर सकते।
3 दिन वहाँ लग रहे हैं,
7 मुहर्रम की सुबह पहुंचे थे, 8-9 पानी था वैसे वहाँ पे नहीं। लेकिन एक बात बताऊँ मैं आपको, हम जब बॉर्डर पे रहे तो इराकियों से जब मैंने कहा कि ये इतने दिन के प्यासे लोग हैं, बच्चे भी हैं बूढ़े भी हैं, तो आप कम से कम इनके खाने का तो इवन कुछ इंतजाम करें, तो अंदर गई पे ये बात करने में, लोग इस बात पे यकीन नहीं करे कि इन्होंने कुछ किया है। वो अल्लाह देखता है, मैं नीयत, मैंने साफ कहा था मेरी नीयत खराब होगी या मेरी नीयत।
असल में मैं आपको बड़ी भोंडी सी मिसाल दूं,
उन्होंने खाने का इंतजाम किया, वो लंगर देते थे सुबह दोपहर शाम देते थे।
अच्छा, वहां देते थे,
तीनों टाइम दिया,
तीनों दिन दिया। असल में पुरानी पाकिस्तानी फिल्मों के अंदर कभी ऐसा होता था कि एक शख्स खड़े होकर कहता था कि ये शादी नहीं हो सकती, और पूछते क्यों, कहते दुल्हन अंधी है, उसके बाद सब चीज दुल्हन अंधी है, दुल्हन अंधी है, दुल्हन अंधी है, ये दुल्हन अंधी है का शोर है, जिसने नहीं भी, जिस जो विक्टिम नहीं भी है वो चीख रहा है, इसलिए चीख रहा है कि अब जब आपके खिलाफ बातें होने शुरू होंगी तो फिर सारी बातें होती है, हर आदमी बोल रहा होता है, जो विक्टिम होता है जो नहीं होता है, वो जो नेट पे चीजें आप देख रही हैं जो सब जगह पे मौजूद है, जो ज़बान ज़दे ख़ास वहाँ में, वो यही है, और इसमें कोई शुबा नहीं है। आप भी इसको एडमिट करें कि आपकी गलतियाँ हैं। अब हम ये जहाँ हमने मिसमैनेजमेंट को ऑन से देखा, और उसके बाद आपसे बॉर्डर की गलतियों को देखा जो नहीं होना चाहिए था, और अब एक इशू इसमें जाफर नकवी साहब का उड़ गया, तो मेरा ख्याल है कि हम उनसे भी बात करेंगे और इस इशू को क्लियर करेंगे कि वो कह रहा है कि 55 लाख रुपए की आपने पेमेंट ही नहीं की है। अगर पेमेंट की होगी तो उनके पास यकीनन कोई प्रूफ होगा,
हमारे पास मौजूद है,
क्योंकि मेरा ख्याल ये कि अप्रूवल बगैर पेमेंट के नहीं
आती।
अगर उनके पास अप्रूवल्स मौजूद हैं और उन्होंने अप्रूवल्स आपको दी नहीं थी क्या?
अप्रूवल दी ना उसने,
तो फिर दी थी तो उसके बाद पेमेंट हुई,
अप्रूवल दी है,
अप्रूवल दी है जब हमारे पास मौजूद है।
फिर हम कैसे कह रहे हैं कि उन्होंने पेमेंट नहीं की?
हम नहीं कह रहे, तो वो कह रहा है, तो हम कह रहा है कि पैसे नहीं दिए, नहीं दिए, नहीं दिए। सबको 1200 लोगों को एक बात पता है कि काबर ऑफ प्राइड ने जाफर नकवी को पैसे नहीं दिए, जबकि ऐसा नहीं है, पैसे दिए वो, पैसे पानी नहीं पिलाया।
सुनिए, पैसे आपने पेमेंट किए या अच्छी बात की आपने, इधर कुछ तो कह रहे जाफर नकवी जाफर नकवी साहब के
नहीं, उनका एटीट्यूड ऐसा है।
अच्छा अच्छा, ऐसा पेमेंट आपने की है या अली जाफरी ने की है?
पेमेंट मुख्तलिफ हैंडों से हुई है। अच्छा। मैंने भी करी है, अली जाफर ने भी करी है, इन्होंने भी करी है, अली गदनफर ने भी करी है। हाँ। लड़का होता है एक मदर, उसने भी करी है। हाँ। मुख्तलिफ,
और जिस जिसने करी है उससे रिसीविंग ली है,
कोशिश ये है कि हम चीजों को समराइज कर लें और पता कर लें कि मामला क्या है। पहली बात जो हमने की है ऑन जाफरी से, ऑन ये कह रहे हैं कि हाँ जी ये मिस्टेक है, ये मैनेजमेंट के मसले हैं, गलत हो गया, नहीं होना चाहिए था, और आप ये फिल्म के बगैर वीजे के जाना नहीं चाहिए था, एक बड़ी मिस्टेक।
हाँ, सही कह रहे
हैं। इससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम इसके सलूशन की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह कि सर सलूशन क्या है। आगे बढ़ते हैं, मैं अली असगर से सवाल करूंगा। अली असगर आपके दफ्तर के अंदर काम कर रहे हैं, मैं ये पूछा दफ्तर का माहौल क्या है, कौन अकाउंट मेंटेन कर रहा है, जो लोग आके जमा करा रहे हैं पासपोर्ट्स, आप पासपोर्ट्स देख रहे हैं, ये किसके पास जा रहे हैं पासपोर्ट्स, और जब पासपोर्ट्स आ रहे हैं तो मेरा सवाल ये कि पक्के पासपोर्ट्स आ रहे हैं या पासपोर्ट की कॉपीज आ रही हैं? एक सवाल है, अच्छा ईरान के लिए गालिबन पासपोर्ट चाहिए होता है, क्या आपके पास अथॉरिटी है कि आप अपने पास पासपोर्ट रख सकें? ये एक सवाल है। अब ये ऑन जवाब देंगे या आप जवाब देंगे? और दूसरी अहम तरीन बात ये है कि उसको मैनेज कौन कर रहा है, लिस्टिंग कौन कर रहा है, पैसे कौन रिसीव कर रहा है, रसीद कौन इशू कर रहा है पैसे की, 60,000 जॉब ले रहे हैं।
अच्छा इसमें
अकाउंट्स कौन मेंटेन कर रहा है, अहम तरीन बात ये बताएं पहले।
देखिए पहली चीज़ तो ये कि हमारे पास कोई अकाउंट,
सॉरी बात कट रही, आपकी जिम्मेदारी क्या है पहले ये बता दें।
मेरी जिम्मेदारी तो पहले दिन से मैं बैठा था आके तो डिफाइंड ही नहीं थी।
डिफाइंड नहीं थी?
नहीं थी। मैं
बैठे क्यों थे?
मैं इसलिए बैठा था क्योंकि मैं एक जगह से भाई पूरा एक नया बाब है, वो एक नया वाक्य है।
हाँ ठीक है, वो तो छोड़ दें, ठीक है।
वहाँ से मैं
यहाँ आया
और मैं जब वहाँ आके बैठा तो मुझे उस वक्त मेरी जिम्मेदारी की क्या मुझे पता नहीं था। मैंने खुद अली जाफर से बात पूछी कि भाई मेरी जिम्मेदारी क्या है।
हाँ।
तो उन्होंने मुझे एक जवाब दिया कि तुम बस पासपोर्ट करो।
अच्छा
ये मेरी जिम्मेदारी थी।
पासपोर्ट तो मैं बहुत सारे कर सकता था यार।
अच्छा कम पासपोर्ट किया
मैंने, बहुत कम पासपोर्ट किया अल्लाह का शुक्र। मैंने
अच्छा आपको उसके मतलब गाड़ी वाड़ी
क्योंकि ऐसी कोई बात मुझसे, अच्छा मैंने ना ऐसी बात कभी कोई छेड़ी ना मुझसे की गई, यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे कोई सैलरी मिल रही है नहीं मिल रही, मुझे कुछ भी नहीं पता था।
अच्छा
मैं
तो आपसे किसी कमीशन का वादा तो किया होगा ना, इतने कर लो तो इतना मिल जाएगा, ये कर लो तो
ये गवाह है सामने बैठे, कोई कमीशन की बात नहीं, कोई सैलरी की मुझसे कोई बात।
तो आप क्या जॉब कर रहे थे सवाल?
मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि मैं बहुत मुश्किल है, बहुत लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं भाई मैं मान ही नहीं सकता कि आपको कुछ मिल नहीं रहा था और आप बैठे हुए थे। बात यहाँ पर ये थी कि ऐसा हकीकत ऐसा ही था क्योंकि अब है मेरे ब्लड के अंदर ऐसी चीज़ें कि जो वाकया हो चुका था जिसके बाद मैं वहाँ आया था वो एक ऐसा भारी।
अच्छा इसका मतलब जो आपके आपके जुमलों से समझ रहा हूँ, आप किसी बोझ तले थे
जी, एक एहसान
जो आपके ऊपर से एहसान उतारा गया। किसने उतारा वो?
ऑन जाफरी एंड अली जाफर।
ऑन जाफरी एंड अली जाफर उन्होंने उतारा और आप फिर जो है वो यहाँ पे आ गए।
मैं उस पोजीशन में था कि मैं ये भी नहीं कह सकता,
मतलब आप बेगार कैंप में आ गए, ये कह रहे हैं।
मतलब मैं ये भी इस पोजीशन में नहीं था कि मैं ये कह सकूँ कि यार ये गलत हो रहा है ये सही हो रहा है। अच्छा। क्योंकि उस वक्त मेरी पोजीशन कोई ऐसी नहीं थी। अली जाफर का मेरे साथ हवाले से कुछ मूड खराब था फ्रॉम द डे वन।
क्या मतलब? एक आदमी जो आपको लेकर आ रहा है, आप पे पैसे खर्च करके या एहसान उतार के लेकर आ रहा है,
बिल्कुल ऐसे ही
है, तो फिर मूड क्यों खराब है उसका?
मुझे नहीं पता।
असल में वो मैं बात काट रहा हूँ, ये जब आया था तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि इसको मैं अपनी टीम मेंबर बनाऊँ, अपनी टीम के साथ लेके चलूँ। जिसका एटीट्यूड है और जो वे ऑफ काम का है इसका, वो बड़ा अच्छा है और सेंसिबल तरीके से काम कर रहा था। अच्छा अली जाफर को अब जब हमें लगता है कि उसको सिर्फ पासपोर्ट 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 चाहिए होते हैं, जब इससे बात हुई मैंने बोला भाई तुम देख लो तुम कितने पासपोर्ट कर सकते हो, तो वो तुम मुझे बता दो, तुम उसके हिसाब से उसको मैं बता दूंगा। इसने बोला ऑनलाइन में कोशिश करता हूँ। इसने एफर्ट की डे एंड तक, स्टार्ट से लेके एंड तक इसने बड़ी एफर्ट करी है, इधर उधर गया भी है, भागा भी है, बहुत इसने काम किया है। और जब ये सानिया हो गया तो उसने बहुत सारे लोगों को फेस भी किया है इसने। तो वो बस ये था कि ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं उसको ये बोलता जब तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो तुम उसको लेके नहीं आना चाहिए था।
अच्छा अली जाफर आपसे कहता था कि
समझ नहीं आ रहा, तब तुम्हें समझ नहीं आ रहा तुम उसको लेके नहीं आ,
शिकायत करता था कि इस वजह से समझ में नहीं आ रहा।
एक टाइमिंग का एक इशू था मेरे हिसाब से तो।
हाँ।
और मुझे शायद दूसरा कोई इशू नहीं लगता।
आप क्या कहते हैं?
हो सकता है ये एक रीज़न हो सकता है, लेकिन उसका एक रीज़न ये भी था कि हम जब ऑफिस से निकलते थे तो हमारे जाने का वो टाइम नहीं होता था।
ये मैंने जैसे बात की वो 3 बजे भी जा रहे हैं तो 4 बजे।
हाँ, लेकिन चले छोड़े तो
मैं मैक्सिमम 12 बजे मैं ऑफिस
पहुँचा। वो तो चले अलहदा मौजूद के उनको आप अच्छे लगते थे बुरे लगते थे। सवाल ये है कि पोजीशन क्या थी? आप वो पासपोर्ट्स जो रिसीव कर आप रिसीव कर रहे थे कि जो जारी वहाँ आ रहे थे उसको मैनेज कौन कर रहा था?
पासपोर्ट्स कोई रिसीव नहीं कर रहा था। पासपोर्ट इस तरह से हो रहा था कि लोग अपने पासपोर्ट लेकर आते थे। अच्छा मैंने जब पासपोर्ट लेकर आया तो मैंने मुझे ये पता था कि अली गजनवी को देने। अच्छा मैं अली जब मैं आया हूँ ऑफिस में तो उस वक्त माहौल बहुत अजीब सा था। मतलब क्योंकि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ मैं एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट से आया हूँ और जब मैं ऑफिस में आया हूँ तो वहाँ पर चीज़ें जो काफ़ी अनप्रोफेशनल थी, स्कैटर्ड थी, बिखरी हुई थी। मिसाल के तौर पे हम पासपोर्ट खोल के तस्वीरें रखी हुई बहुत सारे लोगों की और पासपोर्ट से तस्वीरों को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ
फिर से बता
रहा मतलब तस्वीरें जो है वो टेबल में भरी पड़ी हैं
असल में,
पासपोर्ट खोल के हम तस्वीरें मैच कर रहे
हैं। हमने एक डिसाइड किया
है तो ये अब सवाल ये है कि जो पासपोर्ट आपके पास आ रहे हैं वो किसके हाथ में किसके जा रहे हैं? सवाल देखिए आपने मुझसे कहा कि आपको अगर ईरान इराक वीज़ा चाहिए, आपको 6 तस्वीरें चाहिए मिसाल के तौर पे, ये फॉर्म चाहिए फिल करना होगा, ये चीज़ें चाहिए, मैं वो पूरे एक एनवलप में रखूंगा या किसी चीज़ में रखूंगा और ले जाके आपको दूंगा। अब किसी के हाथ में तो मैं ले जाके दूंगा ना, उसकी जिम्मेदारी है कि वो क्या करता, तस्वीर अलग डाल देता, पासपोर्ट अलग डाल देता, क्या मतलब?
मैं वही कह रहा हूँ कि मैं मेरे जितने पासपोर्ट आए हैं उसके तो पीछे तस्वीरों में नाम भी लिखे होते थे, उस पर भी बहुत सारी तस्वीरें मिस हो जाती थी। बहुत सारी जगह ऐसा होता कि किसी का मेडिकल नहीं मिल, मेडिकल को तो आखिरी वक्त तक इशू रहा है कि किसी का मिल रहा है किसी का नहीं मिल रहा, लेकिन एक ये मामला था कि तस्वीरें मिस हो जाती थी, NIC कॉपीज मिस हो जाती थी, यहाँ तक कि जब हम फॉर्म भर रहे थे उस वक्त भी बहुत से लोगों की NICs थी और कुछ की तस्वीरें।
अगर इस चीज के साथ आप ईरानियन कॉन्सुलेट या किसी भी कॉन्सुलेट के अंदर फॉर्म जमा कराएंगे तो वो आपको वीजा क्यों देगा, चाहे आपके पास बड़ी से बड़ी सोर्स क्यों ना।
नहीं, लेकिन उसके अंदर भी उसमें मैनेज, देखिए मैनेज तो हो गया था, वो प्रोसेस चला,
मैनेज सर नहीं हुआ था, अगर होता तो पासपोर्ट इस तरह से वापस नहीं
किया। वो सही है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं ऐसे भी ये कह रहा हूँ कि अनप्रोफेशनल एटीट्यूड था।
देखिए ना, आपके पासपोर्ट्स फिल किए गए हैं एक साहब के घर में बैठ के, दो दिन पहले
कुछ खराबियां थी ना, दो चार थी।
मैं वो अर्ज करूं, वो काम तो आप पहले भी कर सकते थे ना, वो करके देते,
वो देते तो करते ना, वो बताते तो रीजन कि ये वजह जो वीजा नहीं लगा रहे हम आपके, 17-18 दिन उन्होंने
कौन फॉलो कर रहा था, कौन
फॉलो कर रहा था, इसके हाथ में था डॉक्यूमेंटेशन, अली गजनफर के हाथ में,
जो भी
ईरान का।
हम अली गजनफर से इंशाल्लाह भी थोड़ी देर बात करते हैं, आप देख रहे हैं मेरे अपनों के साथ, मैं आपका शोजा जी, हमारे साथ रहिएगा।